अध्याय 8, मंचूरिया में जापान। जापान इन मंचूरिया। पृष्ठ संख्या 111। पोर्ट्समाउथ की संधि 1905, जिसके द्वारा 1904 से 5 का रूस जापान युद्ध समाप्त हुआ, से जापान को मंचूरिया में अपने साम्राज्य की नींव रखने का मौका प्राप्त हुआ, और यामागाता अरितोमो की जापान की सुरक्षा एवं रुचि की दो परती परिकल्पना साकार हुई। पहली परत जापान की सीमा रेखा लाइन ऑफ सोवरेंटी थी, जिसकी रक्षा के लिए अब जापान के पास एक शक्तिशाली सैनिक आधार था। दूसरी परत पड़ोसी देशों से गुजरने वाली रुचि रेखा लाइन ऑफ इंटरेस्ट थी, जो यामागाता के अनुसार देश की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न शक्तियों में अच्छा दर्जा प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक थी। स्पष्ट है, रुचि रेखा तभी प्राप्त की जा सकती थी जब एक राष्ट्र अपने सीमाओं के बाहर जाकर अपना प्रभुत्व कायम करने की चेष्टा करे। इस प्रकार मंचूरिया में जापान का प्रवेश पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा ही नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ शायद अवश्यंभावी रूप में यामागाता द्वारा व्यक्त की गई जापानी सुरक्षा और रुचि की दो परती परिकल्पना के कारण हुआ। इस संधि के फलस्वरूप लगभग सारा दक्षिण मंचूरिया जापान के नियंत्रण में आ गया, लेकिन शेष मंचूरिया चीन के पास ही रहा। हालांकि वह भी सिर्फ कहने को ही चीन के पास ही था। इस प्रकार मंचूरिया में दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र स्थापित हुआ, तथा इसी का फायदा आने वाले समय में जापान के विस्तारवादी सैन्यवाद ने उठाया। लेकिन यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि यह सब कुछ जापानी सैन्यवाद के कारण ही हुआ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ऐसे आर्थिक घटक भी काम कर रहे थे जिन्होंने सचमुच जापान को एक सही उपनिवेशक देश बना दिया था। पृष्ठ संख्या 112। रूस जापान युद्ध के बाद प्राप्त किए अधिकारों के फलस्वरूप जापान की पहले से ही प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, जो उद्योगीकरण के पहले चरण से गुजर चुकी थी, को काफी फायदा पहुंचा। मंचूरिया न केवल जापान की बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छे बाजार के रूप में प्राप्त हुआ, बल्कि जापान के चल रहे औद्योगिक विस्तार के लिए वह एक कच्चे माल का अच्छा स्रोत भी सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ मंचूरिया प्राप्त हो जाने से जापान को मानसिक एवं सैनिक सुरक्षा प्रदान हुई, जो समाज में काफी संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। इसी मुद्दे ने बाद में एक और रूप धारण कर लिया, जिसका वर्णन तनाका गिईची के व्याख्यानों में मिलता है, कि जापान को अपने आधिक्य जनसंख्या के लिए एक निकास चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोग जापानी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए भारी समस्याएं पैदा कर रहे थे। इस तरह मंचूरिया में जापान की रुचि इतनी ज्यादा और विस्तृत थी कि उसके कारण मंचूरिया पर न केवल एक सक्रिय नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गई, बल्कि उस रुचि ने मंचूरिया के प्रति जापान की नीति को एक विशिष्ट दिशा एवं लक्ष्य प्रदान किया। जापान की चीन जापान 1894 से 95 एवं रूस जापान 1904 से 5 युद्धों में विजय ने एक बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया था कि जापान मात्र पूर्वी एशिया की प्रमुख सैनिक शक्ति ही नहीं था, बल्कि उसकी तुलना किसी भी पाश्चात्य शक्ति से की जा सकती थी। इस आत्मविश्वास के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के कारण पाश्चात्य सैनिक शक्ति के केंद्रीय यूरोप की ओर लग जाने से भी जापान को एक अच्छा अवसर मिल गया। ऐसी स्थिति में जापान ने स्वयं को पूर्वी एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने, क्षत्रिय प्रभुत्व का उत्तराधिकारी बनने तथा चीनी स्रोतों पर नियंत्रण करने के मौके के साथ पाया। जैसा कि उस समय के साम्राज्यवाद का तर्क था, जापान ने चीन के सामने अपने 21 मांगे 21 डिमांड्स रखी, लेकिन 12 नवंबर 1921 से 6 फरवरी 1922 तक हुए वाशिंगटन सम्मेलन वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस ने जापान की 21 मांगों को कुछ हल्का कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन के बाद जापान ने इन मांगों के गुट 5 को वापस ले लिया। इसके साथ साथ जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिणी मंचूरिया में अपने अधिमानात्मक अधिकार त्याग दिए और दक्षिणी मंचूरिया एवं पूर्वी आंतरिक मंगोलिया को जापान ने 1920 में स्थापित बैंक संघ के लिए अपनी सहूलियत के अनुसार रेलवे ऋणों के लिए भी खोल दिया। लेकिन सम्मेलन में हुई नौ शक्तियों की संधि 9 पावर ट्रीटी की सुरक्षा धारा सिक्योरिटी क्लॉज को विभिन्न राष्ट्रों ने अलग अलग तरह से समझा। जापान ने इस संधि का यह अर्थ लगाया कि शक्तियां चीन में एक दूसरे की रुचियों में बाधा नहीं डालेंगी तथा इस संधि की शर्तें मंचूरिया में जापान के विशेष अधिकारों पर लागू नहीं होंगी। जापान के सेना मंत्री यामानाशी हांजो ने तो यहाँ तक समझा कि इस क्षेत्र में जापान की आत्मरक्षा के लिए कार्य करने के अधिकार को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ये आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस एवं विशेष रुचियां स्पेशल इंटरेस्ट नामक दो मुद्दे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद के काल में मंचूरिया के प्रति जापान की नीति का आधार बने। जापानियों में आमतौर पर यह महसूस किया जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापानी अर्थव्यवस्था को जो बड़ा प्रोत्साहन मिला उससे बरकरार रखने के लिए जापानी उत्पादनों के लिए कई और बाजारों की आवश्यकता थी। इसलिए अब इस बात की सिफारिश की जा रही थी कि मंचूरिया में रेलवे तथा अन्य अधिकारों के लिए संधियों का अनुसरण किया जाए तथा इस क्षेत्र में और आर्थिक अधिकारों के लिए बातचीत की जानी चाहिए। ऐसी धारणा शिदेहारा एवं तनाका जैसे व्यक्तियों की थी जो जापान की मंचूरिया नीति बनाने के लिए जिम्मेदार थे। वे राष्ट्रीय भलाई के लिए जापान के विदेशी आर्थिक विस्तार को आवश्यक समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के विकास में घरेलू अर्थव्यवस्था तथा विदेशी व्यापार एवं निवेश में सीधा संबंध था। हालांकि दक्षिण एवं मध्य चीन को नज़रअंदाज नहीं किया गया था, लेकिन मंचूरिया में जापानी निवेश की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसा विशेषकर तनाका द्वारा महसूस भी किया गया कि जापान को आधिक्य जनसंख्या के लिए एक निकास की आवश्यकता थी। उनके अनुसार जापान की आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं का कारण उसकी जरूरत से ज़्यादा जनसंख्या तथा उसके आर्थिक विकास के स्तर पर तनाव था। एक ओर तो जनसंख्या बढ़ती श्रम शक्ति के कारण उद्योगों को नौकरियां देने पर बाध्य कर रही थी और दूसरी ओर कृषि उत्पादों की कीमतों जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से पहले ही अधिक थी को और भी बढ़ा रही थी। इसलिए यह महसूस किया गया कि आप्रवासन इमिग्रेशन विशेषकर मंचूरिया में कृषि पर से दबाव को कम कर देगा तथा उद्योग को आयोजित ढंग से विकसित होने का मौका प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यामागाता आरितोमो की जापान की रक्षा और सुरक्षा के बारे में यह धारणा थी कि जापान को अपनी सीमाओं के बाहर अपनी रुचि रेखा की एक शक्तिशाली सेना द्वारा रक्षा करनी चाहिए। यह सभी तथ्य जापान की मंचूरिया में आर्थिक एवं राजनीतिक मजबूरियों का कारण थे। इन मजबूरियों के कारण जापानियों ने महसूस किया कि मंचूरिया में जापान की भूमिका एवं रुचियों के लिए अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त की जाए। 1920 के दशक में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जापान ने शिदेहारा के नेतृत्व में सह समृद्धि एवं सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण किया जो चीन एवं जापान दोनों के लिए लाभदायक समझी जाती थी। ऐसी नीतियों के प्रभाव में मंचूरिया के प्रति कार्य पथ अपनाया गया। चूंकि इस कार्य पथ ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थन किया था, अंतः कैनशेइकाई मंत्रिमंडल की तरफ से चियांग चियेश्र के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रति कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसी नीति के कारण जापान की विदेशी और आंतरिक राजनीति में अस्थिरता आ गई। केनसेई काय मंत्रिमंडल की दशा भी बिगड़ गई, जब चीन की तरह मंचूरिया में भी आंदोलन आरंभ हो गए और शिदेहारा ने राष्ट्र की रुचियों को देखभाल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए बिना सह समृद्धि एवं सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण किया। तनाका के नेतृत्व में सेयुकाय दल ने इस प्रकार की हस्तक्षेप रहित नीति का विरोध किया और सुझाव दिया कि चूंकि चीन की आंतरिक घटनाएं उसी की सीमा के बाहर के क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालेंगी, इसलिए जापान को स्वतंत्र रूप से या यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर कदम उठाने के रास्ते खुले रखने चाहिए। लेकिन मंचूरिया के प्रति वह नीति जिसने हस्तक्षेपवादियों को ज़्यादा मजबूत बनाया, तनाका ने 22 जून से 7 जुलाई 1927 के पूर्वी सम्मेलन ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में पेश की। इस सम्मेलन में तनाका ने वायदा किया कि मंचूरिया में वह किसी भी प्रकार की हलचल को रोकने के लिए कदम उठाएगा। इस वायदे की शब्दावली में जापान के लिए हस्तक्षेप के अधिकार के प्रयोग की पूरी गुंजाइश थी और इस प्रकार उसके अधिकारों एवं रुचियों के लिए खतरा टल गया। हालांकि शिदेहारा कभी हस्तक्षेप की नीति के खिलाफ नहीं था, लेकिन चीन के प्रति आमतौर पर और मंचूरिया के प्रति विशेषकर उसके अस्पष्ट रुख ने पूरे सम्मेलन में तनाका के वायदे की नई विवेचना की गुंजाइश पैदा कर दी। इसी सम्मेलन में तनाका ने मंचूरिया में एक शक्तिशाली शख्सियत के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया ताकि उसके द्वारा दो उद्देश्य पूरे किए जा सके। पहले वह मंचूरिया में जापान के विशेष अधिकारों की रक्षा करे तथा दूसरे वह राजनीतिक स्थिरता प्रदान करे ताकि मंचूरिया का आगे आर्थिक विकास हो सके। यह शक्तिशाली शख्सियत जिनके बारे में तनाका सोच रहे थे वह चांग तजुओलिन थे, बशर्ते वह पेचिंग से शनयांग आ जाएं। चांग से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह मंचूरिया में शांति कायम करेंगे, उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे तथा वहां पर जापान को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। इस तरह चांग के समर्थन को जापान की मंचूरियाई नीति का आधार बनाया गया। इस नीति को लागू करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया गया वह थी दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी, साउथ मंचूरिया रेलवे कंपनी, जिसका नेतृत्व यामा मोतो जोतारो के हाथों में था। यामा मोतो को इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके विचार तनाका एवं उनके मंत्रिमंडल जैसे ही थे। वह चाहता था कि दक्षिण मंचूरिया रेलवे के उद्देश्य जापान को उसके उद्योग के आधार पर विकसित करने की मंत्रिमंडल की नीति के अनुकूल हों। इसके लिए उसने मंचूरिया के स्रोतों के उपयोग के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव रखा। उसने यह भी सुझाव दिया कि दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी को कोयला, स्टील एवं रासायनिक खाद जैसे उद्योगों जो जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे का विकास करना चाहिए। लेकिन कुछ घटनाओं के कारण चांग तजुओलिन एवं यामामोतो के बीच बातचीत में विलंब हो गया। आरोप लगाया गया कि मंचूरियाई सरकार द्वारा पहले की संधि का उल्लंघन किया गया क्योंकि उसने जापानी रेलवे लाइनों के समानांतर चीनी रेलवे लाइनों को बिछाए जाने दिया तथा अतिरिक्त दूतावास खोलने के जापानी मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए शनयांग में दूतावास अध्यक्ष योशिदा शिगेरू को मंचूरियाई अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कहा गया। उसे निर्देश दिया गया कि वह चांग तजुओलिन को इस बात की चेतावनी दे कि यदि संधि के उल्लंघनों पर रोक नहीं लगाई गई तो जापान न केवल उन्हें दक्षिण मंचूरियाई रेलवे कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं को बंद कर देगा बल्कि उनकी सेना के लिए रसद देने से भी मना कर सकता है। लेकिन तनाका ने योशिदा को यह भी हिदायत दी कि वह उचित समय पर बता दे कि जापान मंचूरिया में 2.5% अतिरिक्त सीमा शुल्क कस्टम सरटैक्स मान्यता देने के साथ साथ जापानी रेलवे लाइनों के समांतर चीन द्वारा कुछ रेलवे लाइनें बिछाने की इजाज़त भी दे सकता है, बशर्ते चीन जापान को मंचूरिया में दूसरे स्थानों पर अपनी रेलवे लाइनें बिछाने की आज्ञा दे दे। अतः उसने औपचारिक तौर पर आपत्ति जाहिर की और 23 जुलाई को फंग थियेन प्रांत के राज्यपाल मो तज हुएई को इशारा किया कि यदि चीनी प्रतिक्रिया में विलंब हुआ तो जापान कुछ कदम उठा सकता है। आगे जाकर उसने 4 अगस्त को मो तज हुएई को सूचित किया कि जापान चीन की सैनिक गाड़ियों को सनयांग जंक्शन पर, जहां चीनी रेलवे दक्षिण मंचूरिया रेलवे को पार करता था, रोक सकता है। योशिदा ने यह टोक्यो की सहमति से किया, लेकिन बाद में अनेकों गुटों के दबाव डालने पर तनाका ने यह कहकर योशिदा के किए गए कार्य को स्वीकृति देने से मना कर दिया कि वह उसे दिए गए अधिकारों की सीमा पार कर गया है। विभिन्न गुटों जिन्होंने योशिदा का विरोध किया था, उनका कहना था कि योशिदा की नीति काफ़ी कठोर थी और उसका जापान पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। अब मंत्री योशिजावा केनकीची को बातचीत के लिए कहा गया। उसे तनाका ने आदेश दिया कि शनयांग में हुई गड़बड़ के लिए वह चांग तजुओलिन के पास जापानी आपत्ति जाहिर करे। अंत में तनाका ने यह स्पष्टीकरण मान लिया कि गड़बड़ी राष्ट्रवादी उग्रवादियों द्वारा करवाई गई थी, लेकिन जापान विरोधी दंगों का फायदा उठाकर तनाका ने चांग तजुओलिन के साथ यामामोतो की बातचीत के लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन यह गुप्त बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि उनका जापान में इस बात के लिए विरोध किया गया कि वह साम्राज्य राजनयिक माध्यमों के बाहर थी। यह भी कहा गया कि इस प्रकार की बातचीत चांग तजुओलिन को अनिश्चित समय तक समर्थन देने के लिए जापान को बाध्य कर सकती थी।